हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 46 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तत्थामा वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद् भागवतं प्रामाणममालम् प्रेम पुमर्थोमः श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्राधरो नापरा वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांभर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानि करारिविन्दे न पदारिविन्दम् मुखारिविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवीपि बस्वा मृतुमेतदेव गोविंद दामो धर्मादवीति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरधरति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 5 जिसका शीर्षक है मैत्रेय से विदुर की वार्ता। इस अध्याय के प्रारंभ में हमने देखा कि विदुर जी और उद्धव जी का जब मिलन होता है तो विदुर जी का जब मैत्रेय मुनि से मिलन होता है तो विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि बताइए कि हर कोई जीव जो है वो सुख प्राप्त करने के लिए सारा जीवन प्रयास करता रहता है, लेकिन उसके हाथ में तो केवल दुखी आता है, तो ऐसा क्या कारण है? तब उसका उत्तर देते हुए मैत्रेय मुनि बोलते हैं कि संसार में हर एक वस्तु जो है वो जीव के दुख का कारण बनती है, क्योंकि उसकी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम, इस संसार में जो कुछ भी है वो अनित्य है और आत्मा नित्य है, इसलिए आत्मा तभी संतुष्ट हो सकती है जब वो नित्य भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़कर भगवान से प्रेम करती है। उसके उपरांत दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हे महर्षि, कृपा करके बताइए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी हैं तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। तो भगवान ने किस तरह से संसार की सृष्टि की उसके विषय में प्रश्न करते, भगवान के अलग अलग अवतारों के विषय में भी प्रश्न करते हैं और साथ साथ में ये भी बताते हैं कि यदि हम सदैव भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनते रहते हैं किंतु हमारे मन कभी भी भगवान के विषय में सुनते सुनते पूर्णतया संतुष्ट नहीं होते हैं, हृदय में हमेशा इच्छा रहती है कि हम शुद्ध भक्तों से भगवान के विषय में सुनते रहें। वास्तव में भक्तों, वेदुर जी वेद व्यास जी के पुत्र हैं, इसलिए वे मैत्री ऋषि से कहते हैं कि मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारम्बार सुन चुका हूँ और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ। अब मुझे सांसारिक विषयों के विषय में नहीं सुनना है, पर वे विषय बिना कृष्ण विषयक कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सकते। तो वो कहना चाहते हैं मुझे ये सब बातें बताइए, लेकिन कृष्ण कथा करके, यानी कृष्ण को जोड़ के कि संसार से कृष्ण का क्या संबंध है, संसार में किस तरह से कृष्ण आते हैं, तो इस भौतिक जगत में कृष्ण का जो संबंध है उससे उसको मुझे बताइए, क्योंकि मैं वही कृष्ण कथा श्रवण करना चाहती हूँ। क्योंकि जब कोई कृष्ण कथा के अमृत को चखकर आनंदित हो जाता है, जब उसे इतना उत्तम रस प्राप्त हो जाता है, तो फिर उसे भौतिक रस जो है वो अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, जिसको इतना हायर टेस्ट प्राप्त हो जाता है फिर उसको दूसरी कथा में आनंद नहीं आता। और जिनको भगवान की कथा में आनंद नहीं आता है उसका वे कारण बताते हैं कि जीव तांचोच शोचान वेदोनुशोचे हरे कथायां विमुखान घेन, अर्थात जिसके अघेन मतलब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, उन्हीं को भगवान की कथा आनंदित नहीं करती है। यदि हमको भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा ना हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कथा में रस नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे अपराध इतने भारी हैं कि वो हमें कथा के रस का आनंद लेने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं स्वामी पिछले पाप के कारण हरि कथा ना सुहाए, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, श्रवण में आनंद नहीं आता, उसका कारण यही है कि हमें अपने जीवन में बहुत अपराध किए। और यदि किसी को कथा श्रवण करने में आनंद आता है उसका मतलब क्या है जानते हैं? जन्म कोटि कृतम पुण्यम, जिसने करोड़ों जन्मों में पुण्य किए होंगे ना, उन्हीं को भगवान की कथा में आनंद आता है। तो आप सब जो भगवान की कथा से इतना प्रेम करते हो, डेफिनेटली अनेक जन्मों से अनेक पुण्यों के पूंजी को जमा करके यहाँ पर एकत्रित हैं, तभी हम भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा करते हैं। विदुर जी के इन प्रश्नों को सुनकर मैत्रेय मुनि बहुत प्रसन्न हुए। क्योंकि जब भगवान के विषय में प्रश्न किया जाता है तो वक्ता जो भगवान का भक्त होता है वो बहुत प्रसन्न होता है। इसीलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं, साधु पृष्ठम त्वया साधु लोकान साध्वनु ग्रहणता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनो दुक्ष जात्मना। हे विदुर, तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है। एक भक्त संसार पर बहुत कृपा इसी तरह कर सकता है कि वो भगवान के विषय में उनको ज्ञान प्रदान करे, स्वयं बोलकर या अपने से महान संतों के द्वारा प्रश्न करके उनके द्वारा बुलवा कर। जीव को जब जब कृष्ण कथा प्रदान की जाती है तभी जो बोलता है उसका भी कल्याण होता है, जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, जो पूछता है उसका भी कल्याण होता है। तो जीव को यदि कल्याण का कोई मार्ग है तो वो केवल कृष्ण कथा है। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि आप व्यास जी के वीर्य से उत्पन्न हुए हो, इसलिए आपके मन में भगवान के विषय में श्रवण करने की इच्छा होना स्वाभाविक है। क्योंकि जो पुण्य कार्य करने वाले होते हैं, जो पवित्र लोग होते हैं, उनको सदैव भगवान की विषय में श्रवण करने की इच्छा रहती है। और फिर मैत्रेय मुनि विदुर जी के पहले जन्म के विषय में बताते हैं कि किस तरह से यमराज जी को श्राप मिलता है और फिर वो दासी के घर में विदुर जी के स्वरूप में उत्पन्न होते हैं। उसके उपरांत वो भगवान के विषय में श्रवण करना कथा को प्रारंभ करते हैं कि किस तरह से भगवान ने इस सृष्टि का बनाना प्रारंभ किया, किस तरह से सारे तत्व बनाए, किस तरह से ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब चीज़ें बनती हैं, किस तरह से महत्त्व बनता है, उस सब के विषय में बताते हैं। और हर वस्तु के उत्पन्न होने की क्रिया में भगवान का दृष्टिपात जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वे आगे कहते हैं श्लोक नंबर 37 में, भूतानां नभ आदीनां यद्यद् भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गात् यथासंख्यं गुणान्वितः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण है। मतलब संसार में जो कुछ भी विद्यमान है उसके होने का कारण भगवान का दृष्टिपात है, भगवान की कृपा है। ये संसार जो है वो भगवान ने अपनी कृपा का प्रदर्शन करने के लिए बनाया है, ताकि जीवों को पुनः अवसर प्राप्त हो सके और वो इस संसार में आकर भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जा सकें। मतलब जीव को ये इच्छा नहीं रहती है, जीव अपने कुकर्मों के कारण, दुष्कर्मों के कारण तो भगवान को भूल जाता है, लेकिन भगवान जीव को कभी नहीं भूलता। भगवान सदैव जानता है, याद रखता है और सदैव कोशिश करता रहता है किसी न किसी तरह से इस जीव को पुनः अवसर मिले, जो वो अपने इन दुख भरे संसार से मुक्त होकर भगवान की ओर आ सके। तो ये सब भगवान की कृपा से संसार का सृजन होता है। उसके उपरांत मैत्रेय मुनि कहते हैं, जितने भी भौतिक तत्व हैं, मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जितने भी हमारे इंद्रियां हैं, उन सब पे जो देवता हैं वो सब क्या हैं, उपर्युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्तियाविष्ट अंश हैं, वे सब भगवान के अंश हैं और वे बहिरंग शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं। चूँकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्व के विभिन्न कार्य सौंपे गए, अब उनको अलग अलग सारे देवी देवताओं को एक एक कार्य सौंपा गया, जैसे वरुण जी को जल का डिपार्टमेंट दिया जाता है, इंद्र को वर्षा का डिपार्टमेंट दिया जाता है, पवन देव को वायु का डिपार्टमेंट दिया जाता है। तो जिस जिस देवता को जो जो कार्य, विभिन्न कार्य सौंपे जाते हैं, तो उन्हें वो लगता है कि भगवान जब तक हम पर कृपा नहीं करेंगे तब तक तो हम इन कार्यों को अच्छे से नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि भगवान की कृपा बहुत आवश्यक है। जीव के अंदर चाहे कितनी भी बुद्धि हो, कितनी भी शक्ति हो, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक जीव कोई भी कार्य करने के लिए समर्थ नहीं होगा। इसलिए हमें देवताओं से ये सीखना चाहिए। देवता हैं वो, इतने ऊंचे पद पर हैं, लेकिन फिर भी कार्य करने से पहले भगवान की स्तुति करते हैं। हमें भी सुबह सवेरे उठकर अपने दिनचर्या को प्रारंभ करने से पहले भगवान की स्तुति करनी चाहिए। भगवान को अपने आप को समर्पित करना चाहिए कि भगवान, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूँगा, मैं अच्छा करने का, ताकि अपराध न हो, लेकिन आपको मेरा साथ देना है। मैं अपने आप को आपकी शरणागत करता हूँ, मेरा संरक्षण आपको करना है, मेरा संरक्षण कीजिएगा, जो मैं कार्य करूँ उसमें मेरी सहायता कीजिएगा। तो इस तरह से जब हम भगवान को समर्पित हो जाएंगे ना, फिर हम जब भी कोई कार्य करेंगे ना, इसमें कोई कमी रह जाएगी, इसमें कोई त्रुटि रह जाएगी, और ना ही उस कर्म का हमें फल लगेगा। उसका कर्म का फल जो भगवान को समर्पित किया जाता है, वो कर्म ही भक्ति बन जाता है। इसलिए उसको भोग, उसके रिजल्ट को भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। तो देवता जो हैं वो भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं, और भगवान की मनोहर स्तुतियाँ हमने यहाँ से प्रारंभ की थी पढ़ना, श्लोक नंबर 39, जिसमें देवता कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है। जिस तरह छाता हमको धूप और गर्मी से बचाता है, उस इसी तरह संसार में केवल दुख हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, और जब कोई भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो हमारे समस्त कष्टों से भगवान के चरण कमल हमारी रक्षा करते हैं। सारे जीव जो हैं वो भगवान की शरण में जाते हैं, ताकि जब तक जीव भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, शास्त्र ये देवता कहते हैं कि दातार्यदस्मिन् भव ईश जीवा तापत्रयेण विहितान शर्म, कि कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर जाकर जीव अपने दुखों को समाप्त कर सके। इस भौतिक संसार में जीवों के दुख कभी भी समाप्त नहीं होंगे, जीव को सुख तब कभी भी प्राप्त नहीं होगा जब तक कि जीव भगवान की शरण में नहीं आ जाता। देवता सिखाते हैं, वो बता रहे हैं कि भले हम स्वर्ग लोक में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जीव को आनंद नहीं आएगा जब तक कि वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। इसलिए बुद्धिमान वही है जो भगवान की शरण को स्वीकार करता है। और भगवान के चरण कमलों में श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी, वे बताते हैं श्लोक नंबर 42 में, यह श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृच्यमाने हृदय वधाया। यह श्रद्धया, जब कोई जीव श्रद्धा के साथ श्रुतवत्या केवल श्रवण करता है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के विषय में श्रवण करने का अवसर साक्षात एक शुद्ध वैष्णव श्री प्रभुपाद जिसे हम श्रवण करने हैं। इससे बड़ा संसार में और कोई सुख नहीं है, इससे बड़ा भगवान, इससे अधिक और किसी को कुछ नहीं दे सकता। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमको वैष्णव के द्वारा भगवान के विषय में श्रवण करने का अवसर मिले। उसी से भगवान के चरण कमलों में मन लगता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, भक्ति उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है। देवता बताते हैं कि हे प्रभु, हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी है, मन जो संसार में बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं, संसार की बहिरंगा जो आकर्षणीय माया है उनको बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते। वो उनको भगवान की ओर आकर्षण नहीं होता है, उनकी इच्छा नहीं होती है कि वो भगवान की भक्ति करें, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त इतने दूसरों पर कृपा करने वाले होते कि उनके केवल दर्शन मात्र से, जब कोई शुद्ध भक्त का दर्शन करता है तो उनके दर्शन पार कर जीव का हृदय पवित्र होता है, और उनके मुख से जब भगवान के नाम को, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं तो भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाती है। हृदय में भक्ति उत्पन्न होते ही जो ज्ञान है कि हम ये शरीर नहीं हैं, वो उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि जब जीव को पता चलेगा कि शरीर नहीं है तो शरीर से संबंधित वस्तुओं के प्रति उनका आकर्षण भी कम होता जाएगा, और फिर इसको बोलते हैं वैराग्य। तो ये ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के ही संतान है, इसलिए शुद्ध भक्तों की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वो अपने दर्शन कराकर, अपने मुख से भगवत कथा श्रवण कराकर जीवों को भगवान की ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए देवतागण कहते हैं कि आप इतने दयालु हो, आपसे भी अधिक तो आपके भक्त दयालु हैं, कृपालु हैं। और उसके आगे है श्लोक नंबर 46 में बहुत ही सुंदर रीति से इसी बात को बताते हैं कि जब भगवान की कथाओं को श्रवण किया जाता है तो धीरे 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 जीव के हृदय से भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाती है, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है, और जैसे ही भौतिक वस्तुओं से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो वो आसानी से भगवत धाम में प्रवेश कर लेते हैं। तो कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। देवता भगवान से कहते हैं, पानी नती देव कथा सुदाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयागे वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वी युरकुंठलोकुंठदिश्यम क्षम पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाते वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वी युरकुंठदिश्यम। पाने न ते देव, पाने मना पीने से भगवान की कथाओं को, हे प्रभु कथा सुधाया, भगवान की कथा सुधा के समान है अर्थात अमृत के समान है, तो इन कथाओं को श्रवण नहीं करना होता है, क्योंकि श्रवण तो कान से होता है लेकिन इन कथा को पीना होता है। पाने न मतलब पीना है, हृदय में उसको मनन करना है, और उन कथाओं को मनन करते 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 क्या होगा, प्रवृद्ध भक्त्या, प्रवृद्ध मतलब अत्यंत प्रबुद्ध भक्ति उत्पन्न होगी। जितना जितना हृदय में वो कथाओं को, हमको कभी ऐसा लगता है ना, ये कथाएं तो हमको सुनी हुई है पहले से। एक होता है सुनना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एक होता है सुनना आनंद प्राप्त करने के लिए, दो तरीके होते हैं। भगवान की कथाएं ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, आनंदित होने के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए, हृदय में भक्ति। देखो यहाँ साफ साफ बता हुआ है, पाने न ते देव कथा सुदायम, जो भगवान की कथाओं के अमृत को पान करते हैं तो क्या होता है, प्रवृद्ध भक्त्या, भक्ति इतनी प्रवृद्ध हो जाती है, दृढ़ हो जाती है कि विशद आशया यानी अत्यधिक गंभीर विचार, धीरे धीरे जीव इतना गंभीर हो जाता है भगवान के प्रति, आत्मा के प्रति, भक्ति के प्रति, और फिर उसको लगने लगता है कि संसार में मनुष्य का देह प्राप्त करके मैं अब तक कर क्या रहा था, आज तो मैं ये कथा श्रवण कर रहा हूँ, मैंने कितना समय बिता दिया, अब मुझे सीरियस होना है, अब मुझे संसार के जंजाल से, झंझट से दूर होकर भगवान की ओर अपने मन को लगाना है। जब भी जीव ये निश्चय कर लेता है, कैसे करते हैं, पाने न ते देव कथा सुधाया, भगवान की कथाओं को श्रवण करने से, तो क्या होता है, विषदाशयात यानी गंभीरता उसके हृदय में उत्पन्न होती है, और जैसे वो गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है, फिर क्या होता है, वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम। वैराग्य सारम यानी वैराग्य का सारा तात्पर्य, वैराग्य हो जाता है भौतिक वस्तुओं से, और प्रतिलभ्य प्राप्त करके बोधम बुद्धि प्राप्त हो जाती है, कि जब मैं संसार में इटर्नल नहीं हूँ, कल मुझे संसार छोड़ना है, तो मुझे तैयारी करनी चाहिए अपने वास्तविक धाम जाने की, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे वापस संसार में आना पड़े, दुखों को भोगना पड़े। इसलिए क्या करता है, प्रतिलभ्य बोधम, उसको बुद्धि प्राप्त हो जाती है, और इतनी बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे क्या होता है, यथांजसान्वी यूरकुंठतीक्ष्णम, यथा उस बुद्धि के द्वारा, अंजसा, अंजसा मतलब बहुत ही आसानी से, अन्वीयु यानी प्राप्त करता है, किसको, अकुंठतीक्ष्णम, अकुंठ मतलब कुंठ कहते हैं दुख वाली जगह यानी ये भौतिक जगत, और अकुंठ मतलब वैकुंठ यानी आध्यात्मिक आकाश, वैकुंठ जहाँ पर कोई दुख ना हो, कोई परेशानी नहीं। तो जैसे जैसे कथाओं को श्रवण करते हैं, ज्ञान और वैराग्य के कारण जीव भौतिक वस्तुओं से अनासक्ति प्राप्त करके, भगवान के चरणों में आसक्ति उत्पन्न करके, भगवान के धाम में जाने के योग्य बनता है। अनुवाद देखिए, हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, यानी जो बहुत सीरियस हो जाते हैं और भक्ति की जो बहुत ही जो एडवांस स्थिति, यानी वो भौतिक वस्तुओं की इच्छा को छोड़कर भगवान की भक्ति में बहुत सीरियस हो जाते हैं, प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा में की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं, उनको पता चल जाता है, ज्ञान है मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा काम भगवान की सेवा करना है, वही मेरा उद्देश्य है, और फिर उसे संसार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है, और आपकी कथाओं के अमृत को पी कर ही आध्यात्मिक आकर्षण वैकुंठ लोक में को प्राप्त करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेषवादी मानसिक चिंतकों तथा भगवान के शुद्ध भक्तों में जो अंतर होता है वह यही है कि निर्विशेषवादी प्रत्येक अवस्था पर परब्रह्म के कष्ट साध्य ज्ञान से होकर गुजरते हैं, जबकि भक्तगण अपने प्रयास के प्रारंभ से ही समस्त आनंद के धाम में प्रवेश करते हैं। अभी जैसे यहाँ पर अंजसा लिखा हुआ ना, कि बहुत आसानी से, यथांजसन वियुरकुंठ दिशणम, बहुत ही आसानी से, भक्त को कुछ नहीं करना है, बस भगवान की कथाओं का अमृत पीते हैं, ज्ञान भी खुद ही उत्पन्न होता है, वैराग्य खुद ही उत्पन्न होता है, भगवान से प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है, और आसानी से दाम भी मिल जाता है। लेकिन निर्विशेषवादी क्या करते हैं, उनको मानसिक चिंतन करना होता है, और भगवान की ओर उनका क्योंकि प्रेम होता ही नहीं है, वो निर्विशेषवादी होते, तो हर अवस्था में उनको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। प्रेम जहाँ पर नहीं है ना, वहाँ पर साधना में आनंद नहीं आता है। तो यहाँ श्लोक, कष्ट साध्य ज्ञान से होकर गुजरना पड़ता है, और भक्त को तो आसानी से शुरू से आनंद, नेक्टर मिल रहा है, अमृत मिल रहा है। भक्त को भक्तिमय कार्यकलापों के विषय में केवल श्रवण करना होता है, जो कि सामान्य जीव के किसी भी कार्य की तरह सरल होता है, वह बहुत ही सरल ढंग से कार्य करता है, जबकि मानसिक चिंतक को वाक जाल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कुछ तथ्य रहते हैं और कुछ तो निर्विशेष अवस्था बनाए रखने के लिए दिखावा मात्र होते हैं, मतलब उनको खाली मन जो मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा बहुत सारे वाक जाल, बहुत सारी बातें सुनानी पड़ती हैं, ये वो, प्रेम तो होता ही नहीं है ना। जिस बात के अंदर प्रेम नहीं है तो वहाँ पर दिखावा करना पड़ता है कि भाई परमात्मा है, उससे प्रेम करो, निर्विशेष है, क्या प्रेम करेगा कोई उससे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वो बहुत मुश्किल है। और भगवान ने भी कहा है क्लेशो दिकतरस्ते शाम अव्यक्त सत्त चेतसा, क्योंकि हम देहधारी हैं तो जो भगवान साकार स्वरूप में उनके साथ प्रेम करना बहुत सरल है, जो निराकार है भला उससे कोई कैसे प्रेम करेगा। तो यहाँ बता रहे हैं आगे श्री प्रभुपाद जी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर प्रयासों के बावजूद निर्विशेषवादी भगवान की ब्रह्म ज्योति के निर्विशेष तदात्म्य में लीन हो पाता है। इससे तो भगवान के शत्रु भी उनके द्वारा मारे जाने पर सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, किंतु भक्तगण ज्ञान तथा वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोकों को जाते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के लोक हैं। अब ये सायुज्य मुक्ति जो होती है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं ना, वो तो भगवान ऐसी मुक्ति तो राक्षसों को भी दे देते हैं, लेकिन भगवान के धाम में जाना और भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, भगवान के साथ प्रेम का संबंध, वो तो जब भगवान के भक्त भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं और भौतिक वस्तुओं के प्रति उनका वैराग्य हो जाता है, तभी संबंध संभव होता है। तो ऐसा वैकुंठ लोक हर किसी को नहीं मिलता जो आध्यात्मिक आकाश का लोक है। निर्विशेषवादी को तो केवल आकाश प्राप्त होता है, उसे कोई वास्तविक दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता, जबकि भक्त उन लोकों को प्राप्त होता है जहाँ असली आध्यात्मिक जीवन होता है। गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपलब्धियों को धूल की तरह झार देता है और एकमात्र भक्ति को स्वीकार करता है जो दिव्य परिणति है। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त जब सीरियस हो जाता है तो संसार की हर एक वस्तु, हर एक भौतिक आनंद, यहाँ तक कि निर्विशेषवादी के जो साधना का वास्तविक लक्ष्य भगवान के यानी सायुज्य मुक्ति को भी धूल की तरह झाड़ देता है। उसको ये सब नहीं चाहिए, भक्त को तो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना होता है। एकमात्र भक्ति को ही स्वीकार करता है जो दिव्य परिणति है। आगे देवता के इसी बात को और भी अच्छे तरीके से बताते हुए देवता कहते हैं तथा परिचात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान् न तु सेवयाते। तथा परिचात्मसमाधियोग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान् न तु सेवयाते। तथा परे मतलब जहाँ तक, अपरे मतलब अन्य दूसरे जो भक्त नहीं है, कथा नहीं सुनते हैं, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, वो लोग चात्म साधी योग योग यानी यहाँ पर बता रहे आत्म साधी, वो दिव्य आत्म साक्षात करने के लिए योग यानी साधन करते हैं, और उसके बल पर क्या करते हैं, बलेन जित्वा जीतते हैं, किसको, प्रकृतिम बलिष्ठम, जो प्रकृति के जो गुण हैं, अर्जित यानी स्वभाव, प्रकृति के गुण को बलिष्ठम, वो अत्यंत बलिष्ठ हैं। प्रकृति के तीन गुण हैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, उनको जीतना बहुत कठिन है, लेकिन वो अपनी बहुत बड़ी कोशिश से इन गुणों को जीत जाते। वो भी आपको प्राप्त करते हैं। त्वाम एव धीरा पुरुषम विशंति, त्वाम एव, त्वाम मना आपको, एव मना एकमात्र, धीरा मना शांत, पुरुषम पुरुष यानी व्यक्ति को, विशंति वो भी आपको ही प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या होता है, तेषाम, तेषाम मतलब उनके लिए श्रम, बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है, तेषाम श्रम, बहुत ही उनको कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनको प्रकृति के गुणों को जीतना होता है, उनको वैराग्य उत्पन्न करना होता है, उनको निराकार के बारे में सोच सोच कर वो किस तरह से आपकी ओर आकर्षित हो, वो उनके लिए कठिन है। लेकिन आगे कहते हैं, स्यान नतु सेवयाते, स्यान मतलब उनको तो करना पड़ता है, ना मना कभी नहीं तू, लेकिन सेवया जो सेवा करते हैं, जो आपको प्रेम से सेवा, भक्ति सेवा मतलब प्रेम से भगवान को प्रसाद खिलाते हैं, भगवान को आरती करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को श्रृंगार करते हैं, वो तो आसानी से भगवान की ओर अपना प्रेम है ना डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ते, सिर्फ संसार से संबंध को तोड़ना चाहते हैं, तो क्योंकि उनको आगे कोई टेस्ट नहीं मिलता, इसलिए उनको बहुत कठिन लगता है। अनुवाद देखिए, अन्य लोग भी जो कि देवी आत्म साक्षात्कार के द्वारा शांत हो जाते हैं, तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर भी विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है। जबकि भक्त केवल भक्तिमयी सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रेम के श्रम तथा उससे मिलने वाले लाभों की दृष्टि से भक्तगण सदैव उन लोगों से आगे रहते हैं जो ज्ञानियों तथा निर्विशेषवादियों तथा योगियों की संगति के पीछे बावले रहते हैं। यह एक बहुत सुंदर बात है, जब आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो उसके लिए आप अगर कुछ त्याग करते हो तो उसमें कोई कष्ट नहीं होता। जैसे अगर कोई पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है, और उसे लगता है कि भाई मेरे पति को ये पसंद नहीं लगता, तो वो बहुत ही सरलता से छोड़ देती है उसको, कि नहीं मेरे पति को नहीं पसंद लगता ना, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसी तरह जब भगवान से भक्त प्रेम करता है ना, तो फिर वो उन कार्यों को नहीं करता जो कि भगवान को पसंद नहीं लगते, वो भगवान से भगवान की पसंद का ख्याल रखता है कि कृष्ण को अच्छा नहीं लगता तो मैं ये नहीं खाऊंगा, कृष्ण को अच्छा नहीं लगता तो मैं गलत कार्य नहीं करूँगा, तो उसके लिए बहुत आसान है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, निर्विशेषवादी हैं, योगी हैं, क्योंकि उनके अंदर केवल साधना होती है, प्रेम नहीं होता है, इसलिए उनको बहुत कष्ट लगता है ये कार्य करने में। इसलिए यहाँ पर शब्द लिखा है अपरे तथा परे। अपरे का मतलब क्या है, दूसरे, जो ये ऐसा नहीं करते, प्रेम नहीं करते। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अपरे शब्द इस संदर्भ में अत्यंत सार्थक है। यह शब्द उन ज्ञानियों तथा योगियों का द्योतक है जिनकी एकमात्र आशा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकर होने की रहती है। यद्यपि उनका गंतव्य भक्तों के गंतव्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु अभक्तों को भक्तों की उपेक्षा अत्यधिक शर्म करना पड़ता। अभी श्रम उनका कठिन है, उनको बहुत मुश्किल लगता है, निर्विशेषवादियों को बहुत कठिनाई से आगे बढ़ना पड़ता है। भगवान ने कहा, क्लेशो दिकतरस्ते श्याम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम। अव्यक्त के रास्ते पर, निर्विशेषवादी के रास्ते पर चलना भी कठिन है, और उसकी जो मंजिल है वो भी कठिन है, गति कठिन है, लेकिन भक्तों का जो रास्ता है वो भी इतना आनंदमय है। भक्ति करके भगवान को प्राप्त करने के बाद जो आनंद मिलेगा उसका तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें अभी वो मिला नहीं है। भगवत प्राप्ति के बाद जो आनंद मिलता है उसके विषय में कोई नहीं बताता, क्योंकि जो जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है वो कभी संसार में दोबारा आता नहीं है। लेकिन इस रास्ते पर चलने से जो आनंद मिलता है उसी से भक्त संतुष्ट हो जाता है। प्रेम का एहसास भी इबादत से कम नहीं। ये जो प्रेम है ना, उसका खाली एहसास हो जाता है ना, उससे ही जीव संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ बोलते हैं कि जो भगवान से प्रेम नहीं करते, ज्ञानी जन हैं, निर्विशेषवादी हैं, उनका तो एक ही मकसद होता है कि वो निराकार में जाकर लीन होना है। तो उनका जो गंतव्य है, जो उनका लक्ष्य है, वो भक्ति की, भक्तों की तुलना के सामने कुछ भी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं। भक्त तो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनका रास्ता जो है उसमें बहुत ज़्यादा उनको श्रम करना पड़ता है, कठिन लगता है। कोई यह सुझाव रख सकता है कि भक्तिमय सेवा संपन्न करने में भक्तों को भी पर्याप्त श्रम करना होता है ना। भक्तों को भी तो सुबह सवेरे उठना होता है, मंगल आरती करनी होती है, नाम जप करना होता है, भगवान की सेवा करनी होती है। लेकिन किंतु इस श्रम की क्षतिपूर्ति दिव्य आनंद की वृद्धि से हो जाती है। अब जो भक्त भगवान से प्रेम करता है, अगर वो श्रम करता है, मतलब सुबह सवेरे उठता है, मंगल आरती करता है और भगवान की सेवा करता है, उसको उसमें जो आनंद मिल रहा होता है, कभी कभी कोई भक्त है ना, उसको पता हो कि भाई आज एकादशी का दिन है और एकादशी में तपस्या करनी होती है, अनाज नहीं खाना होता है, नाम जप करना होता है, और उसको पता ना हो कि आज एकादशी थी, और एकादशी आधी गुजर जाए और उसको पता चले कि आज एकादशी है, मैंने कोई साधना नहीं की, मैंने आज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं किया, मैंने आज एकादशी नहीं रखी, अनाज खा लिया, उसको इतना दुख होगा कि वो समझेगा कि संसार में इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं। तो वो भले तपस्या कर रहा होता है, लेकिन उस तपस्या में उसको आनंद आ रहा होता है। भक्त जब सुबह उठता है, जिसकी रूटीन है कि मंगला पे उठा है, रोजाना उठता है, कभी वो नहीं उठ सकता है ना, तो ऐसा लगता है कि उसका जीवन नीरस होता है। बार बार उसको रोना आ रहा होता है कि क्यों मेरी साधना सही नहीं हुई, क्यों मैं सुबह उठ के भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। तो वो साधना काल में जो उसका आनंद है, वो साधना के टाइम पर, श्रम के टाइम पर, मेहनत के टाइम पर उसको जो आनंद मिलता है ना, वही उसके लिए सबसे बड़ा सुख है। किंतु यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु इस श्रम की क्षतिपूर्ति दिव्य आनंद की वृद्धि से हो जाती है। भक्तों को भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने से व्यस्त ना रहने की अपेक्षा अधिक आनंद मिलता है। यानी कि जब वो भक्ति नहीं कर रहे होते हैं तो उनको दुख हो रहा है, तपस्या नहीं कर रहे होते तो दुख हो रहा है, लेकिन जब लगे होते तो उनको आनंद आता है। पुरुष तथा स्त्री की के पारिवारिक संयोग में दोनों ही के लिए अधिक श्रम तथा उत्तरदायित्व रहता है। जब पति पत्नी होते हैं तो जब वो एक पुरुष अकेला होता है, स्त्री अलग अकेली होती है, तो उनके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं, वो स्वतंत्र भी होते हैं। लेकिन विवाह के बाद, क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, फिर भी जब वे अकेले होते हैं तो संयुक्त कार्यकलापों के अभाव में उन्हें अधिक झंझट प्राप्ति होती है। फिर भी अकेला रहना पसंद नहीं करता, उनकी हमेशा, जब युवावस्था में आते हैं तो उनकी क्या इच्छा होती है कि हमारा विवाह हो जाए, हम दो होंगे। तो प्रेम में भले ज़्यादा कष्ट हो, ज़्यादा श्रम हो, लेकिन उसका आनंद जो होता है वही उस कष्ट को ख़त्म कर देता है और आनंद को वृद्धि कर देता है। वो आनंद जो है वो उस कष्ट को भुला देता है। लेकिन निर्विशेषवादियों को तो क्योंकि आनंद होता ही नहीं है, लेकिन उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए वो उनका दुखदाई है समय, जो सेवा साधना का है वो भी, और जो प्राप्ति का है। इसी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेषवादियों का मिलन तथा भक्तों का मिलन समान स्तर का नहीं होता है। निर्विशेषवादी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है, अपनी वैयक्तिकता पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास करता है। वो क्या करता है, वो अपने अस्तित्व को समाप्त करके भगवान में लीन होना चाहता है, जबकि भक्तगण परम पुरुष भगवान के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान बनाए रखने के लिए अपनी वैयक्तता यानी अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखते हैं। वो चाहते कि मैं हूँ पकवान है और हम प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करें। वो अपने अस्तित्व को नहीं खोना चाहते। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस तरह भावों का आदान प्रदान दिव्य वैकुंठ लोकों में होता है। अतः वे जिस मुक्ति की तलाश निर्विशेषवादी करते हैं वे भक्ति में पहले ही प्राप्त हो चुकी होती है। भक्तगण अपनी व्यक्तित्वता बनाए रखकर दिव्य आनंद प्राप्त करते हुए स्वयं एवं मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उनको भगवान में लीन होने की जरूरत नहीं है, वो तो भगवान को प्राप्त करके आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये निर्विशेषवादी की जो मुक्ति है उसमें क्या है, भगवान के निराकार में लीन होना, तो उसकी ओर ये आकर्षण नहीं होते हैं। वो तो उनके लिए पहले से ही प्राप्त हो गई है, क्योंकि वो जब अलग भी होते हैं तो भी भगवान के अंदर ही भगवान, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका हृदय भगवान के चरणों में लीन होता है। भक्तगण अपनी व्यक्तिकता बनाए रखकर दिव्य आनंद प्राप्त करते हुए स्वयं एवं मुक्ति पाते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, भक्तों का गंतव्य वैकुंठ या अकुंठ दिशाएं होता है। उनका गंतव्य, उनका लक्ष्य होता है भगवान के धाम में जाना, वह स्थान जहाँ चिंताएं समूल नष्ट हो जाती हैं। वैकुंठ यानी जहाँ पर कोई कुंठ न हो, कोई कष्ट न हो, कोई दुख न हो, कोई प्रॉब्लम न हो, केवल भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान हो। किसी को भक्तों के गंतव्य तथा निर्विशेषवादियों के गंतव्य को एक समान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोनों के गंतव्य स्पष्टतः पृथक पृथक हैं और भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद भी चिन्ह मात्रा या केवल आध्यात्मिक भावनाओं से भिन्न होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, बेवकूफ़ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भले हम निराकार की पूजा करें, भले साकार की पूजा करें, अंत में तो भगवत प्राप्ति है। नहीं, जो साकार की पूजा करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भगवान मिलते हैं, और जो निराकार की पूजा करते हैं वो तो दिव्य ज्योति के अंदर लीन हो जाते हैं। आप सोचो, आप किसी से प्रेम करो और आप उसके अंदर मिल जाओ, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाए, या फिर आप उसको प्राप्त कर लो, वो आपको मिल जाए, इसमें आनंदित कौन होता है? जिसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया उसने तो अपनी आत्महत्या कर दी, उसमें तो आत्महत्या हो गई, आनंद कहाँ मिलेगा? लेकिन जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उनके जीवन में तो केवल आनंद ही आनंद होता है। इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी इन दोनों को पृथक पृथक बता रहे हैं कि गंतव्य जो है वो दोनों का अलग होता है। भक्त तो भगवत प्राप्ति करके आनंदित होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।